हमारे ये संस्थान के नाम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना का मतलब कृष्ण चिंतन का, कृष्ण भक्ति का, या कृष्ण भक्ति रूप अमृत सारा दुनिया भर वितरण करना, बांटने का कार्य हमारा ये संस्थान कर रहे हैं। ये संस्थान का प्रतिष्ठा किए थे हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनके मूर्ति आप यहां देख रहे हैं। उन्होंने सन 1965 में उन्होंने अमेरिका गए थे और वहां इस संस्थान का स्थापना करके कृष्ण भक्ति का प्रचार करना शुरू किया। अकेला, बिल्कुल एकदम अकेला उन्होंने ये कार्य शुरू किए थे। तब उनका उम्र था 70 साल का, और उन्होंने जब वहां गए थे, उनके जान पहचान कोई आदमी नहीं था, उनको सहयोग देने वाला कोई नहीं था, अकेला उन्होंने ये कार्य शुरू किए थे। उसके बाद कुछ यंग अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स, कुछ अमेरिकन लड़का लड़की आकर उनका इस कार्य में मदद देना शुरू किया। उन्होंने उनके द्वारा बहुत ही प्रभावित हो गए थे और उन्होंने ये कृष्ण भक्ति का प्रचार कार्य में उनको सहयोग देना शुरू किया। वैसे 1966 साल में ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का या इस्कॉन का स्थापना हुआ था, और तब से श्रील प्रभुपाद केवल 10-11 साल के अंदर सारा दुनिया भर 108 मंदिर का स्थापना किया। उन्होंने पृथ्वी का सारे बड़े बड़े शहरों में ये हरे कृष्ण का मंदिर स्थापना किया और कृष्ण भक्ति का प्रचार करना शुरू किया, और बहुत सारे आदमी को प्रभावित करके ये संस्थान को सारा विश्व भर फैल दिया था। श्रील प्रभुपाद 1977 सन में इस भौतिक जगत से अप्रकट हुए थे, और उसके बाद उनका संस्थान ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन के भक्त लोग ही ये कार्य संपादन कर रहे हैं, इसका परिचालना कर रहे हैं, और दुनिया भर इसका प्रचार और स्थापना कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जब इस भौतिक जगत से गुजर गए थे 1977 साल में, तब इस्कॉन का 108 मंदिर का स्थापना हुआ था। आज इस्कॉन का लगभग 350 मंदिर का स्थापना हुआ है विश्वभर। तो आज का विषय है जीवन का अंतिम लक्ष्य, द एम, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। हर व्यक्ति का जीवन का कुछ लक्ष्य रहता है ना, और लक्ष्य रहना चाहिए। जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? आप में से कोई आर्ट्स सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, कोई साइंस स्टडी कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे हैं, कोई मेडिसिन स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आप वो कार्य अपना प्रोफेशन बनाना बनाने का तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्य है जैसे जो आप में से जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, लक्ष्य क्या है? डॉक्टर बनना। आप क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस विषय पर। जो इंजीनियर बनना चाहते हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हैं। जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो और कोई सब्जेक्ट को वैसे मास्टर्स डिग्री आप कर रहे हैं। तो वैसे भिन्न भिन्न विषय पर आप पढ़ रहे हैं ताकि आपका लक्ष्य सफल कर सके। तो ये जो लक्ष्य है ये जरूरी है, परंतु असल लक्ष्य क्या है हमारा जीवन का, उसके बारे में आज हम विचार करेंगे। आप सब वो विचार सुनने के लिए तैयार हैं? ओके, हरे कृष्ण। तो हम जो वर्णन करेंगे उसका स्लाइड शो में भी हम दिखाएंगे, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम। कैन यू कवर दिस विंडो? हाँ, इट्स ऑल राइट। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट स्लाइड। ओके, ये पिक्चर आप सब देख रहे हैं, देख सकते हैं। आप वहां जो बैठे हैं दिखाई दे रहे हैं? सबको ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये जो पिक्चर है इसमें किसका वर्णन हुआ? एक देखिए, शुरू में मां की गर्भ में एक बच्चा का, ये जो गर्भ का जो स्थिति है उसका दर्शन हो रहा है। उसके बाद जन्म के बाद एक बच्चा वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। हाँ, वैसे बालक से युवक और धीरे धीरे उसका ये बुढ़ापा आता है, और उसके बाद क्या होता है? अंत में मृत्यु होता है। मृत्यु में ही क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? नहीं, मृत्यु के पश्चात भी क्या होता है? फिर और एक जन्म होता है। मृत्यु के पश्चात फिर जन्म होता है, और फिर भी वैसे बचपन से बालकपन, बालकपन से जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, ऐसे शरीर का परिवर्तन होता है। ये होता है ना, हर व्यक्ति को होता है। हम सबको एक समय हमारा जन्म हुआ था, जन्म के समय हमारा शरीर एक बच्चा का शरीर, छोटा सा शरीर था। धीरे धीरे ये शरीर बढ़ने लगा और अंत में ये हमारा शरीर में शरीर का परिवर्तन, जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और अंत में मृत्यु होगा ना। मृत्यु कभी ना कभी सबको ही होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? हमारा शरीर का परिवर्तन हर समय हो रहा है, हर पल ये शरीर का परिवर्तन हो रहा है ना। तो शरीर का परिवर्तन होते हुए भी हमारा क्या परिवर्तन होता है? मैं जो था, जैसे मैं जब विचार करता हूं, 5 साल का जब था मैं, तब भी मैं था। 15 साल का जब मैं बना, तब भी मैं था। मैं एक ही व्यक्ति, ऐसे 50 साल, 60 साल, ऐसे हमारा शरीर का परिवर्तन होता है, परंतु मैं जो हूं उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो अब विचार ये है कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं के ये शरीर हूं, या शरीर के परे और कोई हूं? अच्छा, इस विषय में भगवद गीता में भगवान, ये जो पिक्चर है ये भगवद गीता का ही एक श्लोक का वर्णन हुआ है। आप में भगवद गीता आप कौन पढ़ चुके हैं? हाथ उठाइए जो जो थोड़ा बहुत पढ़े हुए और भगवद गीता के बारे में जानते हैं, या भगवद गीता के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा। ये भगवद गीता का एक श्लोक का वर्णन इस पिक्चर में हुआ है। वो श्लोक है, देही नोष्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात ये शरीर का, ये शरीर में परिवर्तन होता है, जैसे कौमारम मतलब बचपन, जवानी, जरा बुढ़ापा, ये शरीर का परिवर्तन होने से भी शरीरी जो है, मतलब शरीर का जो मालिक है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। और मृत्यु के पश्चात भी वो रहते हैं और मृत्यु के पश्चात वो और एक शरीर ग्रहण करते हैं। तथा देहांतर, देहांतर का मतलब है देह का अंतर या देह का परिवर्तन। मृत्यु के पश्चात क्या होता है, एक शरीर छोड़ के हम और दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं। कौन करता है? आत्मा, आत्मा। तो यहां भगवद गीता में भगवान आत्मा को शरीरी के रूप में वर्णन किया है। शरीरी का मतलब शरीर का मालिक, और ये शरीर है हमारा बाहर का एक आवरण जैसा। शरीर का परिवर्तन होते हुए भी हमारा परिवर्तन नहीं होता है। तो ये वर्णन भगवद गीता में भगवान करने के बाद भगवान कह रहे हैं ये शरीर कैसा है। ये शरीर एक मशीन जैसा है, यंत्र रूढ़ानी माया भ्रामयन सर्वभूतानी, यंत्र रूढ़ानी माया। इस भौतिक जगत में ये शरीर रूप यंत्र में चढ़कर हम भ्रमण कर रहे हैं। जैसे आप गाड़ी में चढ़कर भ्रमण करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वैसे हम लोग भी ये शरीर रूप यंत्र में चढ़कर हम भ्रमण कर रहे हैं। कभी ऊपर जाते हैं उच्च लोक में, कभी इस मर्त्यलोक में, और कभी पाताल लोक में। ऐसे हम भ्रमंती ऊपर यधा, भ्रमण कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी अधा, मतलब कभी नीचे। तो इस शरीर में देखिए, ये उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा है, यह ऐसे वर्णन। डिड एनीबॉडी ब्रिंग दैट पॉइंटर? डू यू हैव द पॉइंटर? हु हैड द पॉइंटर? ओके, यू या जूम इट, कम फ्रॉम द चाइल्ड। अच्छा, मे बी यू कैन शो द पॉइंटर हियर, द वे हाउ द सोल इज मूविंग। अब देख रहे हैं ऐसे ये आत्मा ये शरीर में है, और शरीर में आत्मा, ऐसे शरीर का परिवर्तन होते हुए भी आत्मा कैसे एक एक ही शरीर में रहकर अंत में वो शरीर छोड़कर दूसरा शरीर में जाते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पिक्चर। ऐसे ये शरीर और शरीरी या आत्मा का वर्णन यह भी किया गया, हम लोग मनुष्य हैं, परंतु हम लोग केवल एक ही शरीर में, मनुष्य शरीर में ही नहीं रहते हैं। हमारे की हमारा कर्म के अनुसार हमारा शरीर का परिवर्तन होता है। मृत्यु के पश्चात अगर हम भला काम करते हैं तो हमारा उच्च लोक में, स्वर्गलोक में स्वर्गलोक प्राप्ति होता है, और हम जब बुरा काम करते हैं तो पशु योनि में हमारा जन्म मिलता है, पशु या पशु से भी अधम जो योनि है वो शरीर हम प्राप्त होते हैं। जैसे हम कार्य करते हैं उस कार्य के अनुसार हमें शरीर मिलता है। इसके बारे में मैं तो ये कह सकता हूं कि जैसे आप यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आप लोग जब अच्छा से पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, तो परीक्षा अंत में परीक्षा के समय कैसा फल मिलता है? भला फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। अच्छा फल मिलने के कारण आपका भविष्य भी अच्छा बनता है, है ना? तो वैसे ही जब हम इस भौतिक जगत में भी जब हम अच्छा तरह काम करते हैं, तो उस काम के कार्य के अनुसार हमें पुरस्कार मिलता है, और जब हम बुरा काम करते हैं उसके फल कैसा होता है? बुरा काम का क्या फल कभी भला हो सकता है? नहीं, बुरा काम के फल बुरा होता है, और बुरा काम करने से हमें दंड मिलता है। भला काम करने से हमें पुरस्कार मिलता है, और बुरा काम करने से हमें दंड मिलता है। ये इसको कर्म का फेर कहा गया है, या कर्म का प्रतिक्रिया, कर्म का फल, उसके बारे में हम बताएंगे। तो ऐसा नहीं कि हमको अब मनुष्य जन्म मिला है तो हमको मनुष्य शरीर ही मिलता रहेगा। कोई जैसे हम कार्य करते हैं उस कार्य के अनुसार हमें कार्य का फल मिलेगा या कर्म का फल मिलेगा। जो भला काम करेगा उसको सुंदर फल मिलेगा, और जो भला काम नहीं करेगा उसका सुंदर फल मिलना संभव नहीं होगा। गो टू द नेक्स्ट वन। आध्यात्मिक जगत में भगवान अपने भक्तों को साथ विराजमान है। ये दो जगत है, ये जगत जो है ये है भौतिक जगत। भौतिक जगत मतलब ये स्थान पंचभूत से बना हुआ है। पंचभूत क्या है? मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांच तत्वों को पंच महाभूत कहा गया है, और इस जगत इस पंचभूत से बना हुआ है। जैसे हमारा शरीर भी पंचभूत से बना हुआ है, तो ये शरीर में मिट्टी है, पानी है, पानी का मतलब तरल पदार्थ जैसा खून, मेद, ये ऐसा बहुत सारे तरल पदार्थ हैं। पानी भी है शरीर में, ये आप तो जानते हैं। ये शरीर का लगभग 80 शतांश पानी है। तो ये शरीर में कठिन पदार्थ हैं जैसा हड्डी, मांस, तरल पदार्थ है पानी, अग्नि, मिट्टी, पानी, अग्नि, आग भी है शरीर में, है ना? शरीर में अगर आग नहीं होता तो ताप क्यों होता है शरीर में? ताप कैसे उत्पन्न होता है? शरीर में टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर कहां से आ रहा है? तो हमें समझना पड़ेगा ये शरीर में आग है। और वायु, हम श्वास लेते हैं, ये शरीर का स्थिति पंच वायु में है। जैसे प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। थैंक यू वेरी मच। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये पांच वायु के द्वारा हमारे सारे शरीर का सारे कार्य होता है। और ये पंचभूत से बना हुआ ये जगत को भौतिक जगत कहा जाता है। ये पंचभूत जो है ये जड़ है, यहां के सब कुछ जड़ है, है ना? परंतु हम क्या जड़ हैं? हमारा शरीर जड़ पदार्थ से बना हुआ है, परंतु हम चेतन हैं, है ना? हमारा चेतना है। तो वो चेतना कहां से आता है? वो चेतना आता है आत्मा से। आत्मा शरीर में जब तक रहता है तब तक शरीर में चेतना रहता है। जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है तब क्या होता है, शरीर में चेतना नहीं रहता है, उसे हम मृत्यु कहते हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ के चला जाता है तो शरीर का मृत्यु होता है। मृत्यु किसका होता है, शरीर का होता है, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। आत्मा, आत्मा के बारे में भगवान भगवद गीता में बताया, अजो नित्य शाश्वत अयं पुराण न हन्नते हन्नमाने शरीरे। ये आत्मा अज मतलब आत्मा जन्म रहित है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। नित्य आत्मा नित्य है, शाश्वत अजो नित्व नित्य शाश्वत अयं पुराण, और न हन्न माने न हन्नते हन्न माने शरीरे। शरीर को हत्या करने से भी आत्मा को कभी हत्या नहीं किया जाता है। जब शरीर आत्मा का रहने का उपयुक्त नहीं रहता है तब आत्मा शरीर छोड़ के चला जाता है। तो अब सवाल पैदा हो रहा है, तो आत्मा कहां से आता है? ये जगत भौतिक जगत है, यहां सब कुछ जड़ है, परंतु आत्मा कहां से आता है? इसका बहुत विस्तारित वर्णन सांख्य दर्शन में हुआ है। आज उसका विचार हम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सूक्ष्म रूप से आत्मा का स्वरूप का निर्णय सांख्य दर्शन में किया गया। भौतिक जगत के विश्लेषण करने के पश्चात आध्यात्मिक जगत का परिचय सांख्य दर्शन में ऐसे आया है, तो वो बहुत गहरा विषय है। बाद में कभी हम एक दिन केवल सांख्य दर्शन के ऊपर ही विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। आज ये सरल रूप से मैं ये बता रहा हूं, भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत आठ पदार्थ से बना हुआ है। भगवान कह रहे हैं, भूमिर आपो अनल वायु खं मनो बुद्धि देवच अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भूमि, भूमि का मतलब मिट्टी, अप, अप का मतलब पानी, भूमिर आपो अनल, अनल का मतलब अग्नि, वायु, खंग, खंग का मतलब है आकाश। भूमिर आपो अनल वायु खंग मतलब आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये आठ वस्तु के द्वारा, इस आठ तत्वों के द्वारा, इस आठ उपादान के द्वारा इस भौतिक जगत का रचना हुआ है। भगवान का यहां इसका ही वर्णन, भौतिक जगत का विश्लेषण भगवान इस रूप से किए हैं अर्जुन के, अर्जुन को समझने समझाने के लिए। भूमि रापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धि देवच अहंकार इति अंग में, उसके पश्चात भगवान कह रहे हैं भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भिन्ना का मतलब भिन्ना प्रकृति, ये प्रकृति भिन्न है मतलब हमसे अलग है। ये भौतिक जगत जो है, इसका, इस जगत का साथ भगवान का डायरेक्ट संपर्क नहीं है, प्रत्यक्ष संपर्क नहीं है। यहां जो संपर्क है ये परोक्ष संपर्क है। इसके कारण इस भौतिक जगत को भगवान को परा प्रकृति या भिन्ना प्रकृति या निकृष्ट प्रकृति के रूप में वर्णन किया गया है। उसके पश्चात भगवान कह रहे हैं अपरयाम इतस्तन्नाम, ये प्रकृति अपरा है। अपरा का मतलब निकृष्ट, इन्फीरियर। अपरायम इतस्तन्नांग प्रकृतिं विद्धि में पराम, इसके परे और एक परा प्रकृति है। परा का मतलब, अपरा का मतलब है निकृष्ट, और परा का मतलब तब क्या हुआ, उत्कृष्ट, इन्फीरियर एंड सुपीरियर। तो ये भौतिक जगत भगवान का अपरा प्रकृति है और इस जगत के परे एक परा प्रकृति है, एक उत्कृष्ट प्रकृति है। और भगवान कह रहे हैं कि जीव भूतांग महाबाहो यजेदांग धार्यते जगत। तो जीव भूतांग जीवात्मा आत्माओं सब उस परा प्रकृति से आए हैं, हम सब भगवान का जो परा प्रकृति है, चेतन जगत जो है, चिन्मय जगत जो है, वहां से हम यहां आए हैं। और हम यहां क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, इस भौतिक जगत को भोग करने का कोशिश कर रहे हैं। जजेदं धार्यते जगत, इस जगत को हम भोग करने का कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो परा प्रकृति है, ये परा, उस परा प्रकृति के वर्णन इस रूप से किया गया है कि वहां भगवान विराज करते हैं, विराजमान हैं, और वहां भगवान के साथ उनके पार्षदों ने हैं जो निरंतर भगवान को सेवा कर रहे हैं, उन्होंने सब भगवान को सेवा कर रहे हैं, और उसके कारण भगवान के साथ उनको एक बहुत गहरा प्यार की संपर्क है। तो जब हम भगवान के साथ हमारा जो संपर्क प्यार का संपर्क था, वो संपर्क तोड़कर जब हम भगवान जैसा भोग करने का वासना करते हैं, तब हम इस भौतिक जगत में आ पहुंचते हैं। तो अब तक आप ये समझने में कोई कोई असुविधा नहीं हो रहा है, मुश्किल नहीं हो रहा है जो मैं वर्णन कर रहा हूं, करने का कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, गो टू द नेक्स्ट वन। तो ये भौतिक जगत जो है, इस जगत को माया की जगत के रूप में वर्णन किया गया है। माया, माया का मतलब है जो नहीं है उसको वो समझना। जैसे रेगिस्तान में मृग तृषा दिखाई देती है ना? तो मृग तृषा के देखने से क्या मालूम होता है, पानी जैसा मालूम होता है, परंतु असल में है क्या, असल में है वो बहुत गर्म रेत। रेत जब बहुत गर्म हो जाता है सूरज की किरण के प्रभाव से, तब मृग तृषा के रूप में दिखाई देता है, पानी के मालूम होता है पानी, परंतु असल में वो पानी नहीं है, है क्या, वो पानी का जो विपरीत जो है, आग है, असल में है आग, परंतु देखने से मालूम होता है कि पानी है। तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलता है, इल्यूजन, और संस्कृत में उसको वर्णन हुआ है माया। तो माया असल में देखिए, माया हमें सजा दे रहा है, दे रही है, दंड दे रही है, परंतु हमें मालूम होता है कि हमें ऐसा मालूम होता है कि ये माया बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, इस जगत बहुत सुंदर एक स्थान है, परंतु असल में हमें यह क्या मिल रहा है, हमें यह कष्ट मिल रहा है, त्रिताप, दुख या कष्ट मिल रहा है, आधी आत्मिक, आधी भौतिक और आधी दैविक। और अंत में क्या होता है, ये जगत जो है, इस जगत का वर्णन कैसे हुआ है हमारा शास्त्र में, आप जानते हैं, इस स्थान को क्या कहा जाता है, मर्त्यलोक, है ना, मर्त्यलोक कहा जाता है। मर्त्यलोक का मतलब क्या होता है, मर्त्य शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ है, आपको याद है, ये मर्त्य शब्द का उत्पत्ति हुआ है मृत्यु से। मर्त्यलोक का मतलब होता है मृत्यु लोक, हाँ? तो असल में है मृत्यु का लोक, परंतु हमें मालूम होता है कि हम यहां बहुत सुंदर एक स्थान में हमें बहुत मजा मिलने का अवकाश मिलेगा। तो हम ऐसे बचपन से हम बड़े होते हैं ये भावना लेके, परंतु अंत में क्या होता है, शरीर में बुढ़ापा आता है और धीरे धीरे हम मृत्यु के कब्जा में आ जाते हैं। तो ये है इस जगत का असल परिचय। हम भगवान को भूलकर हम यहां भौतिक जगत में या मृत्यु लोक में आकर भोग करने का, मजा लूटने का कोशिश कर रहे हैं। हम भगवान को छोड़ दिए हैं, भगवान से दूर चले गए हैं, परंतु भगवान हम हर व्यक्ति के हृदय में, हर जीव के हृदय में विराजमान है। हम भगवान को त्याग दिए हैं, परंतु भगवान कभी हमें त्याग नहीं दिया। जैसे बच्चा वो पिता को भूल सकता है, परंतु पिता कभी अपना बच्चा को भूलता है नहीं। और ऐसे देखते भी हैं हम, बच्चा खेल रहे हैं बगीचा में, उद्यान में खेल रहे हैं माठ पे, और सब वो पिता के बारे में बिल्कुल भूल गए, परंतु पिताजी ने बैठे हुए हैं बेंच में और पिताजी देख रहे हैं बच्चा खेल रहे हैं। और जब सांझ हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, सब वहां से चला जाता है, तब बच्चा रोने लगता है, पिताजी पिताजी आप कहां। तब पिताजी क्या करते हैं, आकर बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं। वैसे ही हम भगवान को भूल गए हैं, परंतु भगवान हमें भूला नहीं। हम भगवान को त्याग दिए हैं, परंतु भगवान हमको नहीं छोड़े हैं। हम जहां भी जाते हैं भगवान हमारे साथ साथ जा रहे हैं। भगवान परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के, हर प्राणी के शरीर में, हर प्राणी के हृदय में विराजमान है। केवल मनुष्य का ही नहीं, हर प्राणी का, चाहे वो जानवर हो या पंछी हो, सरीसृप हो, मछली हो, पेड़ हो, पौधे हो, सब जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। ये इस रूप में भगवान हम सबके हृदय में विराज कर रहे हैं। और क्यों भगवान विराज कर रहे हैं, भगवान विराज कर रहे हैं हमारा हृदय में, दो कारण। एक है उन्होंने देख रहे हैं हम कैसे कार्य करते हैं, और उस कार्य के अनुसार उन्होंने हमें फल प्रदान करते हैं। हमारे कार्य के अनुसार भगवान अनुमंत, उपद्रष्टा और अनुमंता, भगवान दर्शन कर रहे हैं कैसे हम कार्य कर रहे हैं, और भगवान अनुमोदन कर रहे हैं हमको क्या मिलना चाहिए। और असल में भगवान हमारा हृदय में क्यों है, जैसे मैं ये दृष्टांत दिया था, बच्चा खेल रहा है, पिताजी पास में बेंच में बैठे हैं, बच्चा पिताजी के बारे में बिल्कुल भूल गए हैं, परंतु पिताजी ने देख रहे हैं बच्चा कैसे क्या कर रहा है। और जब भी बच्चा का कोई असुविधा होता है, संकट होता है, तो पिताजी आकर, और बच्चा जब पिताजी को बुलाते हैं, पुकारते हैं पिताजी को नाम लेकर, तो पिताजी आके उसको अपना गोद में उठा लेते हैं। वैसे ही हमारे परम पिता भगवान हमारे हृदय में विराज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम उनको प्रति उन्मुख होंगे, जब हम उनको प्यार से पुकारेंगे, पिताजी आप कहां हो, मैं तो इतना उलझन में पड़ा हूं, मैं तो इतना संकट में पड़ा हूं, आप कृपा करके हमें उद्धार कीजिए, तब भगवान क्या करते हैं, जब हम भगवान को ऐसे बुलाते हैं तो भगवान आकर हमें अपना गोद में उठा लेते हैं। इस कारण भगवान परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में विराजमान है। इस भौतिक जगत में तीन गुण हैं, ये प्रकृति का तीन गुण है, सत्यगुण, रजगुण और तमोगुण। ये तीन गुण के द्वारा प्रकृति हम सबको नियंत्रण कर रहे हैं। सत्वगुण के प्रभाव से सुख मिलता है, रजोगुण के प्रभाव से कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, और तमोगुण के प्रभाव से अज्ञान मिलता है। हम तमोगुण के प्रभाव से मोह का उत्पत्ति होता है। तो ऐसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा प्रभावित होकर हम सारे कार्य करते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान बताए हैं, प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वसह अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृते क्रियमानानि, इस प्रकृति में सब कुछ हो रहा है, क्रियमानानि कैसे, गुणै कर्माणि सर्वसह, गुण और कर्म की द्वारा। ये दो प्रिंसिपल्स हैं, गुण और कर्म, गुण कर्म विभागसह, गुण कर्मणि सर्वसह। हम कार्य करते हैं, हमारा कार्य तीन गुण की द्वारा प्रभावित रहता है। हम या तो सत्यगुण में कार्य कर सकते हैं, न तो रजोगुण में, न तो तमोगुण में कार्य कर सकते हैं। जब हम सत्वगुण में कार्य करते हैं, उस कार्य के फल स्वरूप हमें सुख मिलता है। जब हम रजोगुण के द्वारा प्रभावित होकर कार्य करते हैं, तब उस गुण के, उस कार्य के प्रभाव और फल स्वरूप हमें कष्ट मिलता है, और तमोगुण के द्वारा कार्य कर, तमोगुण के द्वारा प्रभावित होकर कार्य करने से हमें बेचैनी, बेहोशी, हम अज्ञान हो जाते हैं। मतलब कुछ जैसे नशा करने से कुछ याद नहीं रहता है, तो वैसे ही तामसिक जो कार्य है उससे व्यक्ति का कुछ होश नहीं रहता है, बेहोश हो जाते हैं, अज्ञान हो जाते हैं। हम जब कार्य करते हैं, उस कार्य के फल हमें किस कैसा मिलता है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। जैसे शराब पीने से, शराब पीने का फल क्या होता है, मृत्यु के पश्चात जमदूत ने आकर हमको जमालय में ले जाता है, वहां दंड देता है। और शराब पीने का कारण क्या होता है, ये गरम जो ये होता है धातु, धातु को गर्म करके हमारे मुंह पे डाला जाता है। चेंज टू नेक्स्ट वन। ये दूसरे को कष्ट देने से उसके फल स्वरूप मृत्यु के पश्चात हमें भी कष्ट मिलता है। जैसे कोई रुपए चुराने के लिए किसी को खून किया, तो उसको भी मृत्यु के पश्चात उसका फल मिलेगा। जो जो अवैध स्त्री संग करता है, तो उसके फल स्वरूप मृत्यु के पश्चात क्या होता है, एक धातु से बना हुआ तप्त एक औरत का शरीर को आलिंगन करने को ये कर, ऐसे उसका फल मिलता है। मांस मछली या आमिष आहार करने का फल भी वैसे दिया जाता है। कुछ ऐसा वस्तु खिलाया जाता है जिससे बहुत कष्ट, ये मृत्यु के पश्चात हमारा स्थूल शरीर हम छोड़ देते हैं, परंतु हमारा सूक्ष्म शरीर रह जाता है, और ये सूक्ष्म शरीर से ये दंड भोगना पड़ता है। लेट्स गो। तो ऐसे तो हम समझा कि ऐसी कार्य नहीं करना चाहिए जिस कार्य करने से हमें अंत में सजा मिलेगा या दंड मिलेगा। करना चाहिए वैसा कार्य नहीं, तो क्या करना चाहिए? भगवान को शरण लेना ही सबसे उत्तम कार्य है। जब हम भगवान को शरण ले लेते हैं, देखिए भगवान को भूल जाने से, भगवान को त्यागने से ही हमें सारे कष्ट मिल रहा है ना। इस भौतिक जगत में हमारा सारे कष्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम भगवान को त्याग दिए हैं। पर जब हम भगवान के पास अपने आप को समर्पण कर देते हैं, तब हमारा सारे समस्याएं का, सारे कुछ दुख का, सारे कष्ट का निवृत्ति हो जाता है। तो इसीलिए भगवान के पास अपने आप को समर्पण करना ही जीवन का चरम उद्देश्य है। इस विषय में हम ऐसे ये एक दृष्टांत दे सकते हैं। देखिए कारागार में कैदी को सजा मिलता है ना। क्यों सजा मिलता है? क्योंकि वो राजा का जो कानून है उस कानून को तोड़ा है। राजा को स्वीकार, राजा को जो ये है प्रभाव, वो स्वीकार नहीं किया, उसके कारण उसको कारागार में दंड मिलता है। तो जो कैदी है, जिसको कारागार में दंड मिल रहा है, वो अगर राजा के पास या राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास ये एक चिट्ठी लिखा कि मैं एक गलत काम किया, ये गलत काम के कारण हमें कष्ट मिल रहा है, ये सजा मिल रहा है, मुझे अब पता चल गया है कि ये ऐसी काम नहीं करना चाहिए, तो अब से मैं आपको स्वीकार कर लेता हूं, आप जो कहेंगे वही हम मानेंगे, आपका जो कानून है वो कानून मैं मानता रहूंगा और उस कानून को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। तब राजा क्या करते हैं? राजा कह सकते हैं कि ठीक है, उसको आप निकाल दो कारागार से, क्योंकि उसका जो मनोभाव, उसका जो मन का जो ये हुआ था, विकार हुआ था, वो अब संशोधन हो गया है। तो वैसे ही जब हम भगवान के पास अपने आप को समर्पण करते हैं, तो भगवान हमारे सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। भगवद गीता में भगवान अंतिम श्लोक में, अपना अंतिम उपदेश में भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं ब्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे जो इतने सारे धर्म हैं, मतलब जो तुम्हारा कर्तव्य तुम समझते हो, वो सब छोड़कर तुम केवल मेरा ही शरण ले लो। माम एकम शरणं ब्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तब मैं तुमको तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा, उसके बारे में तुम कुछ भी सोचो मत, मा शुचः। तो भगवान ये प्रतिश्रुति हमें दे रहे हैं कि अगर हम उनको मान लेते हैं, उनको शरण ले लेते हैं, तब उन्होंने हमारे सारे अपराधों से, सारे पापों से हमें मुक्त कर देंगे। ये भौतिक जगत है एक समुन्दर की तरह, इसे भवसागर कहा जाता है। हम अगर समुद्र में गिर गए हैं तो हमारा हाल कैसा होगा? समुद्र को तैर कर क्या कोई किनारा में जा सकता है? मांझ दरिया से, मांझ समुद्र का बीच से संभव नहीं होता है। परंतु कोई अगर आकर उसको उठा लेते हैं, तब कोई अगर हेलीकॉप्टर गया और उसको उठा लिया, तब बहुत आसानी से वो उस परिस्थिति से मुक्त हो सकता है। तो वैसे ही जब हम भगवान को शरण लेते हैं तब भगवान आकर हमें इस भौतिक जगत से उद्धार कर लेते हैं। तब तो आप बताइए हम सबको क्या करना चाहिए, जीवन का अंतिम उद्देश्य तब क्या है? भगवान को शरण लेना। देखिए भगवान का शरण लेना कोई कठिन काम तो नहीं है, ये ऐसा नहीं कि भगवान को शरण लेने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं। हम जहां भी हो जैसे भी हो जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब करते हुए भी हम भगवान को शरण ले सकते हैं। आप कभी कभी लेते हैं ना, जब परीक्षा के समय जब प्रिपरेशन जब अच्छा नहीं होता है तो आप क्या करते हैं? आप भगवान के पास प्रार्थना करते हैं ना, भगवान इस बार उद्धार कर दीजिए, अगला साल में बहुत अच्छा ढंग से पढ़ाई करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। तो वैसे हम जब सही ढंग से सरल रूप से एकांतिक भावना लेकर भगवान को शरण लेते हैं तब हमें इस भौतिक जगत से भगवान उद्धार कर लेते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहिए, कोई उसमें कोई हर्जा नहीं है, परंतु जो कार्य करने से हमें दंड मिलने का संभावना रहता है वैसी काम नहीं करना चाहिए। उस काम को क्या कहा जाता है? उस काम को पाप कहा जाता है। पाप काम नहीं करना चाहिए। और पाप का जितने सारे पाप हैं ये चार विभाग में उसका विभाजन हुआ है। वो चार जैसे चार पाप का चार पैर हैं, एक जानवर का जैसे चार पैर होता है पाप का भी वैसे चार पैर हैं। वो चार पैर है पाप का, आमिष आहार, मांसाहार, नशा, अवैध संग और मिथ्याचार, जुआ पाशा वगैरह खेलना। तो ये चार काम जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये चार कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट हो तो यू कैन कंटिन्यू टू स्टडी, आप अगर बिजनेस करते हो तो आप अपना कारोबार संभाल सकते हैं, आप अगर जो भी है, आपका अगर प्रोफेशन है, आप अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी भी कर सकते हैं, परंतु केवल भगवान का शरण लेकर सब कुछ करना चाहिए। हर समय याद रखना कि भगवान है और भगवान के कारण, भगवान के प्रभाव से, भगवान का कृपा से ही हमें सब कुछ मिल रहा है। हमारा जो कुछ चाहना, हमारा जो कुछ प्रयोजन है सब भगवान के कृपा से ही मिल रहा है। हमारे खाने का जितने कुछ है वो सब भगवान का कृपा से ही मिल रहा है। हम जो पानी पीते हैं वो भी भगवान का कृपा से मिल रहा है। हम जो श्वास लेते हैं ये भी भगवान का कृपा से ही हो रहा है। ऐसे जो कुछ हम कर रहे हैं ये भगवान का कृपा का ही प्रकाश है। तो देखिए जो हमको इतना प्यार करते हैं क्यों हम उनके पास अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे? आपका पिता अगर आपका देखभाल बहुत अच्छा ढंग से कर रहे हैं तो क्या आपको क्या करना चाहिए? आपके पिता के पास अपने आप को समर्पण कर देना। वैसे ही हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान हमारा परम शुभाकांक्षी हैं, परम सुहृद हैं, और उनके पास अपने आप को समर्पण करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। पूरे पिक्चर ऑफ कृष्ण, डोंट कीप इट पूरे ब्लैंक। सो एनी क्वेश्चन, किसी को कोई प्रश्न है? अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन हियर।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण महाराज, आपने बताया था कि हमारी आत्मा जो है वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो उस हिसाब से तो फिर हमें पिछले जन्म की बातें याद क्यों नहीं रह पाती?
क्यों नहीं याद? आप याद नहीं पाते हैं पिछले जन्म का?
जी,
क्योंकि मृत्यु के पश्चात हमारा जो स्मृति है वो स्मृति का पूर्ण रूप से लोप हो जाता है। पूर्ण रूप से नहीं, बहुत सारे लोप हो जाता है। हाँ, हम बहुत समय के लिए सो जाते हैं। मृत्यु और निद्रा, ये दोनों में अंतर केवल ये है कि निद्रा में हम जब सो जाते हैं तो एक ही शरीर में हम जाग उठते हैं, और मृत्यु भी एक निद्रा जैसा है, बहुत गहरा निद्रा है, और उसके पश्चात हम दूसरा शरीर में जाग उठते हैं। तो ये जो तमिश्रा जो बहुत गहरा अंधेरा में जब हम रहता है तो हमारा स्मृति का लोप हो जाता है, उसके कारण पूर्व जन्म का याद नहीं रहता है। फिर भी हमारा कुछ कुछ याद रहता है जो हमारे परमात्मा की कृपा से उसको स्फुरन होता है। जैसे बच्चा को कोई सिखाता नहीं है कि माँ का स्तन पान करने का, है ना, बच्चा खुद ही पान करना शुरू करता है ना, उसको कोई स्कूल में जाकर शिक्षा नहीं लेना पड़ता है। और बच्चा जन्म के पश्चात रोता है, क्यों रोता है? श्वास लेने के लिए। उसको याद है कि श्वास लेने के लिए हमको रोना पड़ेगा। जो बच्चा रोता नहीं है उसके लिए श्वास लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे हमारा जिसे मनस्तत्व विज्ञान में अवचेतन मन कहा जाता है, चेतन, अवचेतन और अचेतन, ये मन का तीन स्थिति है।
नमस्कार गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने अभी बताया कि भगवान हर किसी के हृदय में होता है, मतलब पेड़ जो है, फूल पौधे सब में, तो फिर ये जो पेड़ है इनको काट के खाना क्यों गलत नहीं है और मांस मच्छी खाना क्यों गलत है? मतलब उनके हृदय में भी भगवान है और पेड़ में भी भगवान है, लौकी में भी भगवान है, हर चीज में भगवान है। तो मतलब फिर
पहली बात तो ये है कि हम जब खाना खाते हैं तो हम ना तो आत्मा को खाते हैं ना तो परमात्मा को खाते हैं। ये खाद्य जो है, और ये भौतिक जगत का ऐसा ही नियम है कि जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरा और जीव को ऊपर निर्भर करके या खाकर अपना जीवन धारण करता है। तो ये प्रकृति का नियम ही है, प्रकृति का हाल ही ऐसा है, खाना पड़ता है। और खाना जो है वो भौतिक वस्तु, मतलब जो खाना, खाद्य जो है वो जीवन के रूप में ही उसको ये होता है। परंतु अच्छा, ये देखिए, चेतना का विभिन्न भिन्न भिन्न स्तर है। जैसे एक पशु का चेतना और एक पेड़ का चेतना एक नहीं है, समान नहीं है। पशु का चेतना और भी डेवलप्ड है, उन्नत है, और एक पेड़ या पौधे का चेतना बहुत ही कम है, ऐसे मालूम होता है कि उसमें चेतना नहीं है। और मनुष्य का चेतना सबसे अधिक है, तो उसके कारण चेतन, जिस प्राणी में चेतना जितना अधिक है उसको हत्या करने से उसका कष्ट का अनुभूति उतना अधिक होता है, और उसका मृत्यु के समय उसका जो कष्ट होता है, उसका जो वेदना, वो सारा शरीर का हर कोष में उसका विस्तार होता है। मतलब वो चेतना का विस्तार हर कोष कोष में रह जाता है। तो जब वो कोष को कोई खाता है तो उस कोष के साथ साथ उस वेदना को ग्रहण करता है। तो उसके कारण बताया गया है कि जो प्राणी का, जो जीव का, जो प्राणी का चेतना उन्नत है, उसका मांस नहीं खाना। और मनुष्यों के लिए विशेष रूप से जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका मनोभाव बहुत शांत और स्निग्ध होना चाहिए। तो उसके कारण उसको जो खाना जो है, बहुत सावधानी से उसको खाना चुनना पड़ता है, ताकि वो कोई विपरीत फल ना लाए उसके आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो ये है स्वाभाविक विचार। उसकी बात तो मैं बताऊंगा। देखिए, हम जो खाना खाते हैं, जो शाकाहारी जो खाना है, उसका तो ऐसा नहीं, हर खाना ये करने के लिए कोई पेड़ को काटना पड़ता है। जैसे जो अनाज जो है, अनाज जो है वो पौधे जब पक जाता है, जो फसल जब पक जाता है, पौधे जब मर जाता है, तब उसको संग्रह किया जाता है। कल्टीवेशन तब होता है। अच्छा, तो ये है हमारा। सब्जी जो है, कभी कभी कुछ सब्जी को लिए काट, जैसे बैगन या भिंडी, इसके लिए हमको पेड़ को काटना नहीं पड़ता है, वैसे फल के रूप में उसको हम प्राप्त होते हैं। और जो बादाम और नट्स वगैरह जो है, उसके लिए भी पेड़ को काटना नहीं पड़ता है, फल को लिए हम ऐसे। हमारा जो खाना है ये है फल, अनाज, दूध, इसमें संग्रह करने में किसी को हत्या नहीं करना पड़ता है। और अगर काटा भी जाता है, जैसे एक जैसे गोभी, ठीक है, गोभी को हम काट रहे हैं, परंतु एक गोभी का जो कष्ट और एक और कोई जानवर, जैसे कोई जानवर गाय का कष्ट, एक समान होगा? नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। या
हरे कृष्ण, हाउ कैन वी गेट द सोल कॉन्शियस?
हाउ कैन वी गेट द
सोल कॉन्शियस?
सोल कॉन्शियसनेस, शुड आई आंसर इन इंग्लिश और इन हिंदी? इन हिंदी, ओके। उनका प्रश्न था कि आत्मा के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, है ना? अच्छा, आत्मा को बारे में जानने, ऐसे तो हम विचार कर सकते हैं, एक शरीर हम देखते हैं, वो 50-60 साल तक जिंदा था, अचानक उसका शरीर में जीवन का जितने सारे सिम्टम्स था, लक्षण था, वो बंद हो जाता है, है ना? होता है। क्यों होता है? जैसे मैं ऐसे बता सकता हूं कि मैं बातें कर रहा हूं आप सबसे, आप भी सोच रहे हैं कि हाँ, उन्होंने यहां बैठकर हमें सुना रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो अगर हमारा अब मृत्यु हो गया, तो हमारा ये शरीर यहां पड़ा रहेगा, परंतु आप बोलेंगे वो चले गए हैं, है ना? मेरा शरीर तो यहां रहा है, पड़ा हुआ है, परंतु आप क्यों बोल रहे हैं कि वो चले गए हैं? तो जो गया वो कौन है? जो ये शरीर को जिंदा रखा था, वो है आत्मा। और भी ऐसे हम सोच सकते हैं कि हमें जो चेतना है वो कहां से आ रहा है? वो चेतना आत्मा से आ रहा है। और अंत में तो मैं बोलूंगा, देखिए, कोई विषय में अगर आप ज्ञान संग्रह करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? कोई अध्यापक के पास किताबें पढ़कर उस ज्ञान को संग्रह करना होता है। तो वैसे ही इस ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको कोई ऐसे शिक्षक के पास, जो जिस ग्रंथ में इस विषय के वर्णन हुआ है, उस ग्रंथ को पाठ करना चाहिए। और सबसे बढ़िया ग्रंथ है भगवद गीता, जो भगवान स्वयं प्रदान किए हैं। हरे कृष्णा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, हु हैज द माइक?
स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि हर मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए, तो अगर कोई ऐसा कर्म करे जिससे मतलब वो गलत कर्म हो, उसको भान ही ना हो कि वो ये गलत कर्म है, उसे बाद में पश्चाताप हो, तो क्या उसे सिर्फ उसी मतलब पश्चाताप के द्वारा ही क्षमा मिल सकती है?
हाँ, जरूर जरूर। हाँ, अगर तो ये फिर पश्चाताप अगर सही हुआ, सही ढंग से हार्दिक भावना लेकर अगर पश्चाताप हुआ तब उसके उससे माफी हो सकता है।
तो
परंतु बात यह है कि एक बार भगवान हमें क्षमा कर सकते हैं परंतु बार बार नहीं करेंगे।
कभी भी मतलब जिस व्यक्ति को उससे कष्ट हुआ है फिर उसके मतलब मन के भावों का क्या?
हाँ, जैसे अगर पश्चाताप अगर हुआ तब उससे वो जो पश्चाताप का मतलब ताप का मतलब क्या होता है? ताप का मतलब क्या होता है? ताप का मतलब क्लेश। हाँ, जो अपने आप ऐसे इसका मतलब ये होता है कि वो जो सजा जो है वो बुरा काम करने के लिए जो सजा मिलना था वो खुद ही वो सजा ले रहे हैं, उसका मन में कष्ट हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, तो देखिए हम जो कुछ कर रहे हैं केवल भगवान ही नहीं स्वर्गलोक का जो देव देवियां हैं उन्होंने भी हमें हमारे ये देख रहे हैं और उन्होंने हमें देखकर हमारा कार्य का फल दे रहे हैं। अगर ये जो पश्चाताप जो है इसका इस कार्य इस पश्चाताप के कारण क्या होता है, जो हमारा दंड जो होना था वो लाघव हो जाता है या तो पूर्ण रूप से उसका क्षय हो जाता है। और सही पश्चाताप तभी होता है जब हम दृढ़ता के साथ ये संकल्प करते हैं कि और कभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, है ना। अगर कोई बोला कि कुछ किया थोड़ा बहुत पश्चाताप हुआ फिर बाद में दो दिन बाद वो काम करना शुरू किया तब क्या होगा, उस दंड से तब सजन ये नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। हु हैज द माइक, हु इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? या
प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जिसे आपने कहा हमसे नैतिक कर्म करना चाहिए, अनैतिक नहीं करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए किसी के साथ, पर क्या नैतिकता क्या है ये जानना आवश्यक, क्योंकि नैतिकता कर्म व्यक्ति प्रभाव काल के अनुसार बदलती जाती। स्वयं कृष्ण ने कई बार अपने भगवद गीता में छल का प्रयोग कर अपने शत्रु का नाश किया है, माना उन्हें सत्य की स्थापना करनी थी बाकी उस स्थिति में भी उन्होंने छल का प्रयोग करा, जैसे पीछे तस्वीर में दिखाया कि नरसिंह अवतार में उन्होंने एक दुष्ट का नाश करा है, पर एक पुत्र के लिए क्या पितृधर्म का कर्तव्य नहीं बनता कि वो अपने पिता के हत्यारे का बदला ले, क्या ये उसका पितृधर्म नहीं बनता?
अच्छा ठीक है, आप बैठे हैं, हम बता रहे। अच्छा जो आप प्रश्न के ताली दे रहे हैं, जवाब का ताली क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ देखिए, नैतिकता जो है वो दो किस्म का होता है, एक समाज के लिए और दूसरा आध्यात्म के लिए, आत्मिक प्रगति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए और समाज के गठन के लिए। ये जो सामाजिक ये हैं कानून है वो भी नीति है, वो भी नैतिक है, परंतु वो रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब आपेक्षिक। जैसे लड़ाई हो रहा है दो पक्ष का, अमेरिका के साथ रशिया का लड़ाई हो रहा है, अमेरिकनों के लिए रशियन को मारना नीति है और रशियन के लिए अमेरिकन को मारना नीति है, परंतु अगर कोई अमेरिकन को मारते हैं तो उसके लिए सजा मिलता है ना। ये है सामाजिक नीति। और चरम नीति जो है वो है आध्यात्मिक, मतलब भगवान जो कहते हैं वो करना ही सही है, सबसे परम नीति है, परम नीति है भगवान का जो निर्देश। धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो नीति भगवान जो कानून दिए हैं वही है धर्म, उसको पालन करना ही परम कर्तव्य है। देखिए अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय, अर्जुन ने लड़ाई नहीं करना चाहा, वो बोला कि मैं तपस्वी बनकर भीख मांग के खाना खाऊंगा फिर मैं ये अपना सज्जनों को हत्या करके ये राज अधिकार हम नहीं करना चाहता हूं। परंतु भगवद गीता के अंत में हम क्या देख रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरा स्मृति जो मोह था अज्ञान था वो नष्ट हो गए हैं, मैं स्मृति प्राप्त हुआ। हाँ, क्या करना चाहिए, हमको याद आ गए हैं। और करिष्य वचनं तब, जो हाँ आप कह रहे हैं वो अब मैं करूंगा। अर्जुन भी लड़ाई कर रहे हैं, दुर्योधन भी लड़ाई कर रहे हैं, दोनों में ये लड़ाई में अंतर है। हाँ, दुर्योधन लड़ाई कर रहे हैं अपना राज्य अधिकार में रखने के लिए, और अर्जुन लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि भगवान उनको लड़ाई करने के लिए बोला। तो असल जो चरम उद्देश्य जो है वो है भगवान का जो कानून, भगवान का जो निर्देश, उसको ही पालन करना। ओ, मैं तो मजाक के बारे में बोला था, उसको सीरियसली मत लेना। आई कैन अंडरस्टैंड। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्वामी जी, मैं मेडिकल कॉलेज से आया हूँ, मेरा नाम सुमीर है। आपने अभी बताया था कि भगवान सबको दे रहा है अपने अपने जरूरत के अनुसार। जैसे मैं मेडिकल में आया तो मेडिकल में आने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देनी पड़ती हैं। तो बहुत मुश्किल से हम यहाँ आए, और जीवन में सबको अपना करियर बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने बोला था कि प्रभु सबको दे रहा है, अगर प्रभु सबको दे रहा है तो फिर मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है?
सबको दे रहे हैं, मैं उसकी पहले बोला ना, कार्य की फल स्वरूप सबको दे रहे हैं। जैसे ये मैं कर्म के विश्लेषण ऐसे किया था, जो जैसे कार्य करते हैं उसके अनुसार फल प्राप्ति हो, फल प्राप्त होता है। जो अच्छा काम करता है और जो अच्छा ढंग से काम करते हैं उनके उसका फल, उसको भला फल मिलता है। जो बुरा ढंग से काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, उसका फल भी बुरा होता है। जैसे आप ही कह रहे हैं, आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, बहुत परिश्रम करना पड़ा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देना पड़ा, और आप भी पढ़ाई में कितना तकलीफ लेना पड़ता है आपको, और ये जो आप कर रहे हैं इसका फल स्वरूप आपको क्या मिलेगा, है ना? ये जो आप जो तकलीफ उठा रहे हैं उसके कारण आपका सुफल मिल रहा है। आप भला काम कर रहे हैं उसके लिए भला फल मिलेगा, जो भला काम नहीं करते हैं उनका फल भला नहीं होगा। भगवान देखिए, भौतिक जगत में भगवान निरपेक्ष हैं, ऐसा नहीं भगवान कोई किसी को फेवर करते हैं और किसी को इनकार करते हैं। भगवान के आंखों में सब समान है, और अपना कार्य के अनुसार सबको फल मिल रहा है। भगवान निरपेक्ष के रूप में, निरपेक्ष रूप में, परमात्मा के रूप में भगवान उपद्रष्टा और अनुमंता। उपद्रष्टा का मतलब भगवान दर्शन कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, और उनके फल के अनुसार, कर्म के अनुसार उनका फल प्रदान कर रहे हैं।
अभी जैसे आपने बोला कि सबको अपने कर्म के अनुसार उसका फल मिलता है, आपने बोला कि भगवान की नजर में सब समान है, तो सबको समान फल मिलना चाहिए?
समान, जैसे राष्ट्र की आंखों में हर प्रजा ही समान है, परंतु जब कोई बुरा काम करता है उसके लिए सजा मिलता है, है ना? जैसे ये, जैसे सोचिए मध्य प्रदेश राष्ट्र है, राष्ट्र के दृष्टिकोण से सब समान है, हर व्यक्ति ही इस राष्ट्र में, इस राष्ट्र का प्रजा है, है ना? और प्रजा के रूप में सब समान है, परंतु जो जैसे काम करते हैं उसके अनुसार उसका फल मिलता है। जैसे पिता की आंखों में हर बच्चा ही समान है ना? परंतु कोई बच्चा भला करता है, कोई खराब बुरा करता है, परंतु पिता के दृष्टिकोण से उनका स्नेह सबके प्रति ही समान ही रहता है। वैसे ही हमारे परम पिता भगवान के दृष्टिकोण से हम सब समान हैं, और भगवान पूर्ण रूप से निरपेक्ष हैं।
स्वामी जी, आपने कहा कि हर इंसान में भगवान होते हैं, तो
हाँ सुनाई दे रहा है,
हर इंसान में भगवान होते हैं, तो हर कर्म भगवान की प्रेरणा से किया जाता है। अब बुरा और
नहीं,
अच्छा
नहीं,
कर्म
नहीं, मैं नहीं बोला कि हर काम भगवान की प्रेरणा से होता है।
जब इंसान में भगवान,
जब देखिए जब निरपेक्ष बोलता है, निरपेक्ष का मतलब भगवान केवल दर्शन कर रहा है, जैसे साक्षी के रूप में दर्शन कर रहे हैं। भगवान किसी को कोई प्रेरणा नहीं देते हैं, परंतु हम जब भगवान की शरण लेते हैं तब भगवान अपना, हमको अपना बना लेते हैं।
हर इंसान में अगर भगवान होते हैं तो वो तब प्रेरणा क्यों नहीं देते?
भगवान होते नहीं, भगवान हर इंसान के, केवल हर इंसान के हृदय में ही नहीं, भगवान हर अणु परमाणु में भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर परमाणु भगवान है, समझे? मतलब भगवान है, और भगवान कैसे हैं ये विचार हमें करना पड़ेगा कि भगवान पूर्ण निरपेक्ष हैं।
भगवान हर इंसान की बुद्धि में नहीं होते हैं।
हाँ,
आप क्या कहना चाहते हैं, हर इंसान की बुद्धि में भगवान नहीं होते हैं?
हर इंसान के हृदय में भगवान है, साक्षी के रूप में।
हृदय और
नहीं, हृदय में है।
अच्छा,
पर भगवान निरपेक्ष या निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं।
गीता में तो कहा गया है कि हर कर्म मेरे द्वारा किया जाता है।
क्या गीता में क्या कहा गया है? हाँ?
कि मेरी प्रेरणा से होता है जो कुछ भी होता है।
नहीं,
ना कोई करता है, ना करता कोई नहीं है, भोगता कोई नहीं है भगवान।
नहीं नहीं, ये गीता का वाणी नहीं है। परंतु गीता में भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति, आपको संस्कृत आता है, ठीक है, उसको विश्लेषण करता हूं। प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वसः अहंकार विमूढ आत्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृते क्रियमानानि, प्रकृति में, इस भौतिक जगत में सब कुछ हो रहा है गुण और कर्म के अनुसार। मतलब अब जीव कार्य करता है, उस कार्य गुण की किसी के न किसी गुण में संपन्न होता है, और उसके अनुसार उसका फल मिल रहा है। कर्म का फल ऐसे हमको समझना पड़ेगा। कर्म का फल तो आप कर्म तो मानते हैं ना, कर्म और कर्म का फल, जैसे हम कार्य करते हैं उसके अनुसार हमें फल मिलता है। ऐसा नहीं भगवान किसी को अच्छा फल देते हैं, भगवान बोलते हैं ये मेरा, हाँ, इसका शकल सुंदर है, इसको फल अच्छा दो, इसका शकल बुरा है, इसको नहीं। भगवान ऐसे नहीं देखते हैं, और भगवान प्रेरणा नहीं दे रहे हैं कि ये काम तुम करो। जब ये प्रेरणा तभी आता है जब हम भगवान को शरण ले लेते हैं। जब हम बोलते हैं कि भगवान, जैसे अर्जुन का रथ का सारथी है भगवान, रथ चला रहे हैं भगवान। जब हम हमारा शरीर रूप रथ का जब भगवान को जब सारथी बनाएंगे, हाँ, तब भगवान चलाएंगे। परंतु अगर हम हमारा मन और बुद्धि के द्वारा ये शरीर को संपादन करना चाहते हैं, तब भगवान उस दायित्व ग्रहण नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे आदमी अपने जीवन काल में जैसे कर्म करता है, जैसे शराब पीता है, गलत कार्य करता है, उसके बाद उसकी आत्मा को कष्ट दिया जाता है।
आप बताइए। ठीक है,
कष्ट दिया जाता तो आत्मा तो इनविजिबल है, तो उसे कैसे संभव है कि उसे जैसे गर्म धातु पिलाना है, कैसे संभव है?
हमारा दो शरीर है, भौतिक शरीर दो प्रकार की होती है। एक है स्थूल शरीर जो ये पंचभूत से बना हुआ है, मिट्टी पानी अग्नि वायु आकाश, ये पंचभूत से ये शरीर बना है। और एक सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि और अहंकार के द्वारा बनाया गया है। तो ये मन बुद्धि और ये शरीर, सूक्ष्म शरीर जो है, मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है, मृत्यु के पश्चात वो शरीर लेकर आत्मा रह जाता है। ये शरीर हम छोड़ते हैं, ये जो स्थूल शरीर जो है इसको हम त्यागते हैं मृत्यु के समय, परंतु सूक्ष्म शरीर रह जाता है। तो वो सूक्ष्म शरीर में ये अनुभूति जो मृत्यु के पश्चात होता है, उसका वर्णन ऐसे किया जा सकता है जैसे आप जब सो जाते हैं तो ये स्थूल शरीर का क्रिया बंद हो जाता है ना, स्थूल शरीर काम नहीं करता है, परंतु आप सपना देखते हैं। वो सपना कहां, कौन कौन देखता है? वो सपना दर्शन सूक्ष्म शरीर में होता है। तो हम जब तक जिंदा रहते हैं तो निद्रा के बाद हम सपने से जाग उठते हैं, परंतु मृत्यु के पश्चात ये स्थूल शरीर नहीं रहता है जिसमें हम जाग सकते हैं। वो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में ही वो अनुभूति होता है, और उसकी कारण उस ये जो सजा मिलता है मृत्यु के पश्चात, उसके द्वारा ये सूक्ष्म शरीर का गठन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
जैसा कि अभी आपने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें चेतना नहीं होती है,
प्लांट्स होते हैं चेतना नहीं बोला कि चेतना नहीं होता, चेतना बहुत
कम होता है।
हाँ,
तो हम उनको खा सकते हैं इन कंपैरिजन एनिमल्स। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जिन एनिमल्स की जो चेतनाहीन हो गए हैं, क्या हम उनको खा सकते हैं? यदि चेतना के बेस पर आप खाने का वो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूंगा, कंफ्यूज हो गया उसमें।
हाँ,
कि जो एनिमल चेतनाहीन हो चुके हैं उनको मतलब, हम खा सकते हैं क्या? उनको कष्ट भी नहीं होगा हमारे खाने से?
इसका मतलब आप कहना चाहते हैं?
नहीं नहीं, मैं बस जानना चाह रहा हूँ, खाने की बात नहीं है, मैं जस्ट कंफ्यूज, इन ताली बजाने से नहीं है, मैं जवाब जानना चाह रहा हूँ।
हाँ,
कि कहाँ, जैसे चेतना वाली बात, मैं चेतना का मतलब नहीं समझा, कहाँ तक आपने चेतना के बेस पर फूड का डिस्ट्रीब्यूशन बताया?
वही मैं कह रहा था।
ओके,
देखिए बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट लोगों के लिए ये मांसाहार वर्जन किया गया है, परंतु ये भी बताया गया है कोई अगर मांस खाना चाहते हैं तो जो जानवर मर गए हैं मृत्यु के पश्चात, उसको जो स्वाभाविक रूप से जिसका मृत्यु हुआ है उसको मांस खा सकता है, परंतु कोई प्राणी को हत्या करके उसको मांस नहीं खाना चाहिए।
हेलो स्वामी जी।
हाँ जी,
मैं ये पूछना चाहता हूँ स्वामी जी कि भगवान के बारे में इतना कहा जाता है तो इसमें मेडिटेशन कैसे हेल्प कर सकता है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ने के लिए? सही तरीका क्या है मेडिटेशन करने का?
नहीं, आप, मैं समझा नहीं आप
जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान को आपने बताया कि इस तरह से जाना चाहिए अपने को पाने के लिए और सच्चा जीवन जीने के लिए जाना चाहिए, तो मेडिटेशन इस तरफ अपने आप को कैसे डायरेक्ट डाइवर्ट कर सकता है और सही तरीका क्या है मेडिटेशन करने का?
सही तरीका का मेडिटेशन है भगवान के बारे में चिंतन। मेडिटेशन ध्यान का मतलब होता है हमारे जो चेतना है उसको, चेतना को केंद्रित करना, फोकस आवर कॉन्शियसनेस इनटू वन पॉइंट। तो असल ध्यान का उद्देश्य होता है भगवान के ऊपर अपना चेतना को केंद्रित करना।
तो लेकिन जब मेडिटेशन करते हैं तो उस समय तो अपने दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं?
नहीं, मेडिटेशन जब आप करते हैं तब मेडिटेशन का 8 अंग है, याम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये पंचम अंग जो है प्रत्याहार, इसका मतलब होता है सारे और विषय से चेतना को हटाकर चेतना को अंतर्मुखी करना। तो देखिए मेडिटेशन जब ध्यान तब होता है जब प्रत्याहार हो जाता है, तो प्रत्याहार के बाद ध्यान होता है। ऐसा नहीं बैठकर इधर उधर के बातें चिंता करना सोचना मेडिटेशन, वो मेडिटेशन नहीं। असल मेडिटेशन जो है वो है ध्यान, उसके बाद धारण, प्रत्याहार के बाद होता है ध्यान। प्रत्याहार ये तो हिंदी शब्द है ना, प्रत्याहार, उसको विथड्रॉ द सेंसेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। तब ही केवल हम ध्यान करने का लायक बनते हैं। ऐसा नहीं बैठ के अमेरिका के बारे में चिंता करना, लंदन के बारे में सोचना, अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचना, हाँ, या अमिताभ के बच्चन के बारे में सोचना, हाँ, ये मेडिटेशन नहीं है। हाँ, असल मेडिटेशन है केवल भगवान के बारे में चिंता।
जय श्री कृष्ण गुरु जी। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो मेरे भाइयों ने आपसे जो क्वेश्चन पूछे उनके आपने आंसर मतलब बहुत ही अच्छे से दिए, बाकी उनसे हमें ज्ञान भी प्राप्त हुआ। बाकी मेरा ये सवाल है कि मतलब भगवान कहाँ से आए,
कौन
जो आत्मा है वो कहाँ से आई है,
आत्मा
कहाँ से सुन सकते हैं?
अच्छा, आत्मा कहाँ से आया? आत्मा ये
भगवान है उनमें जो आत्मा
नहीं,
है, वो कहां
आत्मा
से?
भगवान का अंश है, उसके बारे में मैं बोला था कि भगवान याद है भौतिक जगत का वर्णन कैसे हुआ था, भूमि रापो अनलो वायु खंग मनोबुद्धि रेवचय में बताया था, मट्टी पानी अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये आठ तत्वों से ये भौतिक जगत का रचना हुआ है। और इस जगत को धारण करता है जो जीव आत्मा, वो आया है भगवान की परा प्रकृति से। इस जगत के परे और एक उत्कृष्ट प्रकृति है, एक उत्तम प्रकृति है, भगवान का अपना अंतरंग प्रकृति है, वहां से आत्मा चेतन आत्मा आता है। और उसके कारण जहां से हम आए हैं वहां वापस लौट जाना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। देयर क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चन। या हाँ,
हेलो, आपने गीता का अंत तो बता दिया कि भगवान की शरण में जाना है, भगवान की शरण में कैसे जाएं?
हाँ, वो भी मैं बताया था। हाँ, भगवान के शरण में जाने का तरीका है भगवान के पास अपने आप को समर्पण। जैसे भगवान है प्रभु, हम हैं उनके दास, भगवान को प्रभु मानकर जब दास के रूप में हम अपने आप को भगवान के पास समर्पण करते हैं तब ही भगवान हमें अपने अपना बनाते हैं।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण स्वामी जी।
हरे कृष्ण।
कर्तव्य के अधीन रहकर यदि कोई बुरा कार्य करना पड़े,
थोड़ा आस्ते बोली।
कर्तव्य के अधीन रहकर यदि कोई हमें बुरा कार्य करना पड़े और कार्य करते वक्त यदि उसके साथ कोई
किसके अधीन होकर?
कर्तव्य के अधीन होकर।
हाँ,
कर्तव्य।
कर्तव्य, अच्छा अच्छा, कर्तव्य।
यदि कोई बुरा कार्य करना पड़े और कार्य करते समय यदि उसके साथ कोई पवित्र भाव जोड़ दिया जाए तो क्या वह पश्चाताप है?
हाँ, देखिए, कर्तव्य जो है, कर्तव्य का मतलब है जो करना चाहिए, तो कर्तव्य कभी बुरा नहीं होता है। हाँ, तो कर्तव्य जो है वो कभी बुरा नहीं होता है। हाँ, और उसके कारण पश्चाताप भी नहीं होता है। जैसे कर्तव्य शब्द कैसे होता है, क्री धातु तव्य, मतलब जो करना चाहिए। जैसे जो कर्तव्य जो है वो बुरा नहीं, वो भला काम है। जैसे देखिए, ये शराब पीना खराब है, शराब नहीं पीना चाहिए, बल्कि जब बुखार होता है, बीमार होता है, डॉक्टर ने मेडिसिन के रूप में जब शराब देते हैं तब वो जब खाते हैं तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। जैसे हत्या करना बुरा काम है, खराब काम है, परंतु जब अर्जुन भगवान के निर्देश के अनुसार अपने कर्तव्य मानकर युद्ध कर रहे हैं तब उसमें कोई हर्जा नहीं होता है।
यदि कोई सोल्जर युद्ध में शहीद होता है उसकी गति क्या होती है?
उसका गति क्या होती है? देखिए, असल कर्तव्य क्या है, सब जो जिस विषय में आज हम विचार कर रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, असल सबसे उत्तम, सबसे चरम, सबसे परम कर्तव्य क्या है? परम कर्तव्य है भगवान की शरण लेना। हाँ, तो ये कर्तव्य जब हम मान लेते हैं और भगवान के लिए जब हम कुछ करते हैं, हैं, उसमें कोई गलत फहमी नहीं रहता है।
वन मोर क्वेश्चन सर, वन मोर
क्वेश्चन। अच्छा, एनीवे,
आध्यात्मिक उन्नति के समय चेतना अंतर्मुखी हो जाती है तो उसका प्रभाव शारीरिक शरीर के बाहर कम हो जाता है, क्या यही वैराग्य है?
किन्हें?
आध्यात्मिक उन्नति के समय चेतना अंतर्मुखी हो जाती है तो उसका प्रभाव शरीर के बाहर कम हो जाता है, तो क्या यही वैराग्य है?
उसका क्या, उसका प्रभाव जी? अच्छा, उसका प्रभाव क्या?
शरीर के बाहर कम हो जाता है।
प्रभाव बाहर कम है मतलब? हाँ हाँ,
क्या वही वैराग्य है?
हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ, जैसे आप बहुत मन लगा के जब ध्यान लगा